ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत में देश की शक्ति का दोहन करें। श्री मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने चर्चा से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर आघात है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य गुमनाम नायकों के सर्वोच्च बलिदान पर टिकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि BSF के जवानों ने देश के सम्मान और महत्वाकांक्षाओं की रक्षा पूरी दृढ़ता के साथ की है। श्री शाह ने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान प्रेरणा का अमर स्रोत है। गृह मंत्री ने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने आज जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। आयोग का गठन हिंसा की जांच के लिए किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मी सहित लगभग 25 अन्य घायल हुए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जबरन वसूली और गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ कथित संबंधों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश पालयान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने कहा कि अपराध शाखा ने जांच के दौरान नरेश बाल्यान और लंदन में गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप बरामद करने के बाद यह गिरफ्तारी की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण खामियाजा उठाना पड़ा था। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह इस वर्ष नवम्बर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यह पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है। तूफान के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और कमजोर होकर अगले 12 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में दबाव के क्षेत्र में बदल जाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की PV सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का खिताब भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।